ओम शांति। हम सब भाग्यशाली हैं कि महारथियों के वरदानी बोल हम सबको मिल रहे हैं इसी कड़ी में। आज प्यारे मीठे बाबा की बहुत मीठी हम हमारे यज्ञ की अति स्नेही मीठी शीलू दीदी हम सबके सम्मुख उपस्थित हुई है। वैसे तो शीलू दीदी को मैं समझती हूँ सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे यज्ञ में सबसे पहले टीवी में आने वाली शीलू दीदी रही हैं। जब हम पहले दीदी का परिचय देते थे तो क्या कहते थे, टीवी वाली शीलू दीदी, टीवी वाली शीलू दीदी के नाम से फेमस हो गई थी कि बाबा का ज्ञान का प्रसारण टीवी के माध्यम से करने की प्रथम सेवा करने का श्रेय शीलू दीदी को जाता है। आप बहुत मीठी वरदानी बोल वाली दीदी हैं कि आपको बाबा ने बहुत वरदानों से संवारा है कि आपका अगर हम संक्षिप्त परिचय कहें वो तो बहुत लंबा है परिचय, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि शीलू दीदी बहुत बचपन में बाल्यकाल में केवल 12 वर्ष की थी तब से ही ज्ञान में आई हैं। मुंबई में आपका जन्म हुआ, आपने 12 वर्ष से ज्ञान में आने के बाद इस ज्ञान को अपना करके साइंस की डिग्री हासिल किया, उसके बाद सेवा में आई। आपका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका एवं निर्देशिका राजयोग शिविर ब्रह्मा कुमारी, वाइस चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग राजयोग एंड रिसर्च फाउंडेशन, टीवी चैनलों की प्रवक्ता, महासम्मेलन वक्ता एवं अनुवादक, सिंधी हिंदी इंग्लिश भाषाओं में धारा प्रवाह आप वक्तव्य देती हैं, साथ साथ अनुवादक भी हैं। और पांचों महाद्वीपों में सारे ग्लोब में आपने परिभ्रमण किया और 70 देशों की यात्रा सेवार्थ की। अफ्रीका आदि में अनेक स्थानों पर आपने नए सेवा केंद्र चलाने के सेवा का शुरुआत कराने के निमित्त बनी है। और विदेश की सेवा के बाद बाबा ने आपको 74 से मधुवन में ही सेवारत रखा और आपके लिए एक वरदान दिया कि वैसे तो पहले बाबा ने आपको गंगा बहती गंगा का वरदान दिया था और साथ में जब 74 जब यहाँ मधुवन में सेवा में उपस्थित रखा तब से हर की पौड़ी कि यहाँ रहते ही बहती गंगा विश्व की सेवा करने के निमित्त आत्मा, ऐसा वरदानों से सवारा आपकी मीठी बोल सबको बहुत आकर्षित करती है हमारी यज्ञ की। वो बहुत स्नेही और इतनी ही दिल की साफ, जैसे आज बाबा ने कहा साफ दिल, ये बहुत साफ दिल की बहुत ही इनोसेंट, जैसे छोटे बच्चे होते हैं इस तरह की एक इनोसेंट दिल की साफ वाली महान आत्मा। अभी हम प्यारी दीदी जी से सुनेंगे, आज का टॉपिक है अब घर जाना है। और वैसे दोपहर का समय है, थोड़ा सुस्ती आती है, लेकिन सभी अलर्ट होके बैठ के इस बात को सुने समझें अनुभूति करें घर की। आदरणीय दीदी जी आपसे अभी हम सब सुनना चाहते।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बेहद बाबा के इस बेहद शांतिवन में भट्टी करने आए हैं, तो भट्टी में क्या करते हैं, पकते हैं, पकना होता है भट्ठी में। वैसे भी जो भट्ठे होते हैं, भट्ठी होती है, उसमें चारों ओर आग होती है, तो उसमें जो भी डालो वो पक जाता है या कहें परिवर्तन हो जाता है। आग में अगर आप कोयला डालेंगे तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, रंग बदल देगा, गुण भी बदल देगा। अग्नि में आप सोना डालेंगे तो खाद निकल जाएगी, सोना शुद्ध हो जाएगा। अग्नि में आप मिट्टी डालेंगे वो पक कर ईंट बन जाएगी। उसमें कोई ऐसे आप सब्जी डालेंगे जो कठोर है, आग में डालते ही वो नरम हो जाएगी। हाँ, भरता बनाते ना, बैंगन आग में डालते हैं। और अगर कोई ऐसी कोई किचड़ा है तो वो डालते तो ऊपर उड़ जाता है कार्बन, सब काला काला धुआं निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि अग्नि में कोई भी चीज पड़ी वो परिवर्तित हो जाती है। तो आप सब भी आए हो भट्ठी में, अवश्य यही लक्ष्य लेकर के आए होंगे कि हमको यहां से बिल्कुल बदल के जाना है, स्वच्छ साफ होकर के जाना है। और साथ साथ जब साफ और स्वच्छ कहते हैं, इसका मतलब है सारी मैल निकाल देनी है, सच्चा सोना बन के जाना है। और बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं। सबसे पहले तो स्वमान देते हैं, आप कौन हो। कितने स्वमान बाबा हमको हर मुरली में देते हैं, एक एक स्वमान की कितनी गहराई है। जब बाबा कहते हैं आप होली हंस हो, तो हंस की विशेषता होती है मोती चुगना, कंकड़ फेंकना, क्षीर नीर को अलग करना, सफेद होता है, पंख होते हैं, उड़ता भी है, हल्का होता है। तो हम होली हंस है, वो पवित्र बाबा के बच्चे हैं जो ये सब गुण हमारे अंदर हैं जो हंस के होते हैं। तो इसी प्रकार बाबा हमको कितने वरदान देते हैं। और आज भी बाबा की मुरली में जो वरदान था कि एक वरदान अगर आप उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली और वरदान भी अनुभव होने लगते हैं। और उस वरदान का स्वरूप बनते ही आपको जीवन में भी कितनी सफलता मिलती है। तो परिवर्तन वैसे भी संसार का नियम है, क्षणे क्षणे हर चीज बदलती रहती है। तो ये आंतरिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। निर्मला दीदी ने तो आपको बहुत सुंदर बातें बताई, पर ये मन का भी ऐसा परिवर्तन हो जाए, जो लास्ट में दीदी ने ये भी बताया ना कि जो भी आपको देखे उसके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़े कि ये तो ब्रह्मा कुमारियों में जाकर के कितनी बदल गई है, कितनी अच्छी हो गई है। पहले घर में लड़ते थे, झगड़ते थे, ईर्ष्या रखते थे, कई बार तो मारते भी थे, क्या नहीं करते होंगे, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद सब बदल जाता है। क्योंकि बाबा ने हमको लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है, मनुष्य से देवता बनना है। कितना बड़ा लक्ष्य है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, क्या क्या डिग्रियां लेते हैं, लेकिन मनुष्य से देवता बनने की डिग्री कोई नहीं दे सकता, वो केवल भगवान ही देता है। लेकिन देवता बनने से पहले बहुत सारे बीच में माइलस्टोन्स है, बहुत पार करना पड़ता है। देवता ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, कोई छू मंतर से तो नहीं बनेंगे ना। आत्मा पर जितना पापों का बोझ है, अभी 63 जन्मों का पापों का बोझ है, उसे भी खत्म करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं, कदम कदम पर मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर सजाओं से पावन बनेंगे, या तो योग बल से पावन बनेंगे या तो सजा बल से पावन बनेंगे। इसलिए जितना हो सके हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कदम पर बाबा की याद भूले नहीं। दादी जानकी को कितना नशा रहता था, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। 3 बार ओम शांति कह करके ये जरूर कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, और उसी नशे में रहती थी। और छोटी छोटी बातों से न्यारी बनती जाती थी। हमारी जितनी भी दादियां हैं उन सब ने ऐसा ही पार किया। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थी, जिन्होंने 1983 में अपना देह त्याग किया। बहुत धनवान घर की थी, लेकिन आते ही ठग से बाबा की बनी और सब कुछ छोड़ दिया। और दीदी के अंतिम शब्द यही होते थे, दीदी के जो जब हम दीदी से मिलने जाते थे तो यही कहती थी, क्योंकि उनको समस्याएं बताते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मधुबन में, दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहती थी, तो दीदी के आगे कई बातें आती थी, लेकिन दीदी एक ही शब्द कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, छोड़ो 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 तो छूटो, अब घर जाना है। कोई भी बात को पकड़ कर मत रखो, क्योंकि पकड़ कर रखने से, फिर उसको याद करते रहने से, फिर इतना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवाने से हम ये अपना अमूल्य संगम युगी ब्राह्मण जीवन गंवा रहे हैं। इसलिए छोड़ो, भूलो। एक पक्षी डाली को पकड़ के रखा है, उसने अपने पंजों से डाली को पकड़ के रखा है, डाली पर बैठे और पंख फड़फड़ा रहा है और कहता है, मुझे कोई, हाँ मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है। देख रहा है दूसरे तो उड़ के जा रहे हैं पक्षी, मुझे उड़ना है उड़ना है, तो पंख भी फड़फड़ा रहा है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ऐसे नहीं कि पंख कमजोर है, पंख तो मजबूत है, लेकिन क्यों नहीं उड़ पा रहा है, क्योंकि डाली को जोर से पकड़ के रखा है। अब छोड़े तो छूटे ना, इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो, पकड़ के मत रखो कोई भी बात। गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी जी सदा यही कहते थे कि वो बात जो आती है ना, जिसको पकड़ के रखा है, वो बात तो एक सेकंड में खत्म, मतलब बीत जाती है, वो बात फिर दोबारा उस रूप से नहीं आती है, लेकिन हम उसको मन में इतना पकड़ के रखते हैं और उसको भूलता ही नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो हम भूल ही नहीं पाते हैं, और कई ऐसी बातें जिन जो हमको याद ही नहीं आती है, और जब याद नहीं आती है तो हम कहते हैं अरे मुझे क्या हो गया है, मैं तो कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, मुझे तो ये नाम भी याद नहीं है इसका, मैं भूल गई। तो भुलक्कड़ कहलाते हैं अपने आप को, भूल गए। कोई काम करना है किया नहीं, भाई ये किया नहीं, अरे मैं तो भूल गई, बहाना कितना सैज दे देते हैं। तो जो भूलनी नहीं है वो तो भूल जाते हैं, और जो भूलनी है बातें वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, कैसे भूलूं। इसने मुझे इतना तंग किया था, इतना दुख दिया था, क्या नहीं मेरे साथ किया, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब बाकी बातें भूल जाते हो, ये क्यों नहीं भूल सकते हैं? तो भुलक्कड़ तो नहीं है ना, क्योंकि ये भूलते नहीं है। भुलक्कड़ तब कहे कि जब सब बातें भूल जाओ, इसने मुझे दुख दिया वो भी भूल जाओ, होता है आजकल बहुत ये बीमारी बढ़ती जा रही है, डिमेंशिया, वो बुढ़ापा जैसे आयु बढ़ती है ना, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, खाना खाया ये भी भूल जाते हैं, घर से बाहर निकले जाना कहाँ है पता ही नहीं, भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, भाई पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ये तो कुछ भी इसको याद नहीं है। इसलिए भुलक्कड़ नहीं है, क्योंकि वो बातें तो हमने पकड़ के रखी है।
Yeah।
इसलिए जैसे हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, तो बाबा ने हमको बहुत सुंदर एक उपहार दिया। क्या उपहार दिया? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि। क्योंकि इतना बेहद ज्ञान बाबा ने दिया, तो जैसे हमारी बुद्धि दिव्य बनती गई, तो दिव्य बुद्धि की सौगात बाबा ने हमें दी, जिससे हमारे अंदर परख शक्ति आती गई, जिससे हम अपने जीवन को बदलते गए, व्यवहार में शुद्धि लाते गए, परिवर्तन करते गए। फिर बाबा कहते हैं, अभी जो ब्रह्मा बाप ने किया वो तुम बच्चों को करना है। ब्रह्मा बाप तो ढक से जो शिव बाबा ने कहा तुरंत किया, तुरंत किया। इतना निश्चय था ब्रह्मा बाबा को, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, सतयुग का साक्षात्कार हुआ। बाबा को ये काम मिल गया कि ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है, तो बस अब कैसे बनानी है वो तो पता नहीं था, लेकिन वैराग्य आ गया, जबरदस्त वैराग्य। और उस वैराग्य के कारण बाबा जो इतने बड़े जौहरी थे, हीरों का व्यापारी थे, वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। इतना जबरदस्त वैराग्य आ गया बाबा को, और इतनी बड़ी उनकी कारोबार थी, राजाओं के साथ उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ उनका व्यापार था, लेकिन वो सब छोड़ करके, सब बिजनेस वाइंड अप करके न्यारे प्यारे हो गए। तो कैसे बाबा ने ये ढक से किस आधार पर छोड़ा? बस अभी घर जाना है, यही बुद्धि में रखा। अभी ये धन संपत्ति क्या करेंगे, कितना चाहिए? वैसे भी मनुष्य को कितना चाहिए, पेट के लिए कितना चाहिए? पेट के लिए तो ज्यादा चाहिए नहीं ना, बाकी पेटियों के लिए तो जितनी पेटियां भरते जाओ, चाहे दीवारों में डालते जाओ, पलंग के नीचे रखते जाओ, छत में भरते जाओ, जो चाहो सो करो, पर पेट को तो ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य आज पेट के लिए केवल नहीं कमाते हैं, रोटी कपड़ा मकान वो भी कितना चाहिए, लेकिन चाहिए 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 चाहिए, यही जो अगर बुद्धि में आता है ना, तो बाबा कहते चाहिए चाहिए किया, इच्छाएं बढ़ती जाती है तो अच्छा नहीं बन पाते हैं। अब बाबा ने हमको लक्ष्य दिया कि तुमको देवता बनना है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा के बच्चे बने हो तो माता पिता को फॉलो करो, वो विश्व के मालिक बनेंगे, उनके तख्त नशीन बनना है। तख्त नशीन कैसे बनेंगे? जब उनके आज्ञाकारी बनेंगे। अगर आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो बाबा के दिल पर तो नहीं चढ़ सकेंगे, फिर तख्त पर भी नहीं चढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इतना सहज रूप से वैराग्य दिला दिया। जैसे अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, सिर्फ निमित्त बनो, आप मार नहीं रहे हो, मरे पड़े हैं, ये पहले से दिखा दिया, शमशान सब मरे पड़े हैं, इन सब की मौत निश्चित है, इनके मोह में मत फंसो। क्योंकि अर्जुन को तो बहुत मोह सता रहा था ना, ये मामा चाचा काका ये सब, इनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान ने उनको इतना वैराग्य दिलाया, दिखाया कि ये सब मरे पड़े, लेकिन इतना सहज उनका मोह नहीं हटा। फिर उनको स्वर्ग का तुम अधिकारी बनोगे, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनोगे, वो उनको प्रलोभन दिया तो भी उनका लोभ, वो प्रलोभन भी कहां उनको बुद्धि में बैठा। फिर उनको अपना स्वमान याद दिलाया कि तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, ऐसे युद्ध के मैदान से बीच से नहीं निकलना है, ये तो कायर कहलाओगे। तो स्वमान याद दिलाया, वैराग्य दिलाया, प्रलोभन दिया, स्वर्ग का अधिकार तुमको मिलेगा। लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो मोह के वश था। बस सारी बात इसी की थी, मोह के वश था। लेकिन जब उसने विराट रूप का साक्षात्कार किया और महसूस किया कि ये मुझे कौन बोल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, श्री कृष्ण केवल जो मेरा सखा है वो नहीं बोल रहा है, ये तो स्वयं भगवान बोल रहा है। तो जैसे उसकी आंख खुली, ये भगवान मुझे कह रहा है, फट से उसने उनके पांव पड़ा, घुटनों पर टिका और कहा कि अब आप जो कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूं। लेकिन ये तब तैयार हुआ जब उसका मोह नष्ट हुआ। जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ था तब तक तो बहुत ही बहाने दिए, बहुत ये कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, मन इतना चंचल है, कैसे उसको वश में करूं, ये कैसे करूं, कैसे कैसे, यही कहता रहा। सारी गीता इसी पर है। लेकिन जब ये बुद्धि में आया कि ये कौन कह रहा है मुझे, तब आंख खुली। तो हम भी बाबा की मुरली तो बहुत सुनते हैं, समझते भी हैं कि ये शिव बाबा के माँ वाक्य, ब्रह्मा बाबा के नहीं है, लेकिन फिर भी मुरली सुनते हुए, पढ़ते हुए, सुनाते हुए, मंथन करते हुए, वर्णन करते हुए, जो बाबा हमसे चाहते हैं वो क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक वो वैराग्य आया नहीं है। अभी तक ये छोटे छोटे जो अवगुण हैं वो अभी तक पकड़ के रखे मैंने। इसलिए बाबा हमको यही शिक्षा देते हैं, सदा बुद्धि में रखो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। उसके लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा कभी नहीं भूले कि घर जाना है, नई दुनिया में आना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। दो आंखें हैं, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बस। और इस दुनिया को देखते हुए भी मत देखो। तो जब हम इस प्रकार से अपनी वृत्ति बनाएंगे तभी परिवर्तन आएगा। इसलिए अपने घर में भी हम कैसे रहे, सिंपल कहा जाता है, हाँ, सादा जीवन ऊंच विचार, जीवन सादा हो, क्योंकि सब यहीं रह जाना है। विचार बहुत ऊंचे हो, क्या हम बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। तो जैसे हम अपने अंदर ये विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो ऑटोमेटिकली वाणी में परिवर्तन आएगा, कर्मों में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और सचमुच हम इतने लायक बन जाएंगे। आज भले वो लोग, आपके रिश्तेदार आपको कुछ भी कह रहे हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आगे चल करके वो आपके पांव पड़ेंगे, आपके पांव पड़ेंगे। आपको यही कहेंगे, आपने तो अपना जीवन बना लिया, आप तो धन्य हो, हमने तो अपना जीवन गंवा दिया, ऐसे भी कहेंगे, कहते अभी भी कहते हैं कई। लेकिन ये किस आधार पर होगा, जब आप में इतना परिवर्तन होगा, इतना बेहद का वैराग्य होगा, और बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए बाबा हमें हर मुरली में कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा हमको बेहद का वैराग्य नहीं बतलाते, क्योंकि बाबा ये तो कहते ही नहीं कि छोड़ो, छोड़ने लिए तो कहा ही नहीं है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, घर गृहस्थ में रहना है, परिवार में रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा संभालना है, सब कुछ करना है, बस कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन ये भी एक कला है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है पर फंसना कहीं भी नहीं है, ये एक कला है। क्योंकि फंस गए तो क्या कला है। अब कोई व्यक्ति एक रस्सी पर चलता है पर गिरता नहीं है, कितनी बड़ी कला है ये, रस्सी पर चले और गिरे नहीं। और दूसरा व्यक्ति रास्ते पर चलते गिर जाता है, वैसे चलना कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते पर चलते भी गिर जाते हैं पर वो रस्सी पर भी नहीं गिरता, कितनी बड़ी कला है। एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दो तो वो उसको कहो कि कुछ कुछ करो, कागज दे देंगे, अब वो क्या करेगा, लकीरें खींचता रहेगा और क्या, उसको बेचारे को लिखना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, पेंसिल दे दिया, कागज दे दिया, बिजी कर दिया। लेकिन वही पेंसिल आप एक आर्टिस्ट को दो, आर्टिस्ट जो बहुत अच्छी चित्र बनाता है, चित्रकार को दो, तो वो क्या करेगा, वही पेंसिल है, वही लकीरें हैं, लेकिन वो लकीरें खींचते खींचते एक चेहरा बना देगा, बना देगा ना, क्योंकि उसके अंदर ये कला है। तो ये कला है, तो जीवन जीने की कला क्या है, कैसा जीवन हो हमारा, फंसे भी कहीं नहीं और छोड़े भी कुछ नहीं, क्या ऐसे हो सकता है कि फंस जाएंगे सहज, या छोड़ना, दोनों ही सहज है, छोड़ना भी सहज है, छोड़ो तो छूटो, इसलिए जाओ, हाँ मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, जा। सन्यासी यही करते हैं ना, जंगल में चले गए, न देख न होगी बांस, न बजेगी बांसुरी, पत्नी का मुंह ही नहीं देखना है, छोड़ो। एक सन्यासी आया था, हम सेंटर पर रहते थे, तो एक सन्यासी कोर्स कर रहा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपने सन्यास क्यों किया, इतनी बड़ी उनकी बिजनेस थी, बहुत कुछ था, तो सन्यास क्यों किया, तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा मेरे अपनी पत्नी के कारण सन्यास किया, मेरी पत्नी के कारण। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि पत्नी उसकी इतनी सन्यासिन जैसी होगी जो उसको भी प्रेरणा आई कि मैं भी ऐसे बनूं। तो मैंने कहा कि अच्छा, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी होगी जो आपको ऐसी प्रेरणा दे दे कि सन्यासी बनना है। कहता है नहीं, पहले तो जब शादी से पहले ही हम, वो तो फिर सारा बता दिया उसने, हम जानते थे, फिर चलो परंतु शादी जैसे हुई तो उसने बहुत कुछ डिमांड्स रखी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो मैं नौकरी करता था छोटी सी, तो चाहिए चाहिए, तो पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने बिजनेस चालू की कि नौकरी में तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, तो बिजनेस चालू की, तो वो चाहिए चाहिए तो इनका खत्म ही नहीं हुआ, फिर बच्चे हुए तो और चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो मैंने और बड़ी बिजनेस की, उसको और फैलाया, लेकिन उसकी इच्छाएं तो कोई कम हुई नहीं। फिर कहे मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे भाई के लिए, बच्चों के लिए केवल नहीं, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए। तो पति ने सोचा अभी छोड़ो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ो, और धक से घर से निकल गया और जाके सन्यासी बन गया। वो तो रोती रह गई। अब बताओ, पत्नी के कारण पति सन्यासी बन गया, पर ऐसी पत्नी क्यों बनो भाई? और ये भी तो कायरता है ना कि उसको उसको कंट्रोल नहीं कर सके। क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? पति तो मालिक है। लेकिन हमें क्या करना है? छोड़ना भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं बनना है, पर फंसना भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो इतना फंसे हुए हैं, बात मत पूछो, इतने फंसे हुए हैं। हाँ, चाहिए चाहिए में फंसे हुए हैं। लेकिन बाबा हमें मध्य मार्ग सिखाते हैं, मध्य मार्ग, और साथ में ये भी कहते हैं कि नया भी कुछ नहीं जोड़ो, नया कुछ मत जोड़ो अभी, क्योंकि नया जोड़ेंगे फिर उसको फैलाएंगे फिर बढ़ाएंगे फिर तो फंस गए और ही ज्यादा। अभी तो हिसाब किताब चुकतू करने का समय है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है हमारे सिर पर। एक तो पापों का हिसाब किताब है, दूसरा जो हमारे साथ ही सगी संबंधी जो भी है उनके साथ कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है, अगर छोड़ के भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो हिसाब किताब पीछे खींचेगा। वो सब चुकतू करना है, इसलिए आगे नया कुछ नहीं हिसाब किताब बनाना है। इसलिए छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, नया भी कुछ नहीं जोड़ो, अभी समय नहीं है, नहीं समय नहीं है, नया जोड़ के क्या करेंगे? ये तो मकड़ी की जाल बनाते जाएंगे, मकड़ी अपनी जाल में फंस जाती है, जहां मकड़ी की जाल होगी वहां मकड़ी जरूर होगी, खुद के मुंह से जाल बुनती है तो उसी में रहती है ना। इसलिए नया भी कुछ नहीं जोड़ो, परंतु क्योंकि हिसाब किताब है कर्मों का, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए निभाओ। अब निभाओ, पर कैसे निभाओ ताकि नया कोई हिसाब किताब न बने? इसके लिए क्या करो? सबको सम्मान दो, सबको सम्मान, जितना सम्मान देंगे आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप सम्मान देना छोड़ो नहीं। चलो सम्मान देना मुश्किल है, मान लो कोई कहे तो कम से कम उसको सहन तो करो, क्योंकि सहन शक्ति आपकी जितनी बढ़ेगी उतनी आत्मा की ताकत बढ़ेगी। अगर सहन ही कुछ नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा कि अंदर ताकत है भी या नहीं है? अच्छा, सहन शक्ति नहीं है तो कम से कम स्वीकार तो करो कि हाँ ये संबंध है, स्वीकार करो है, ये सब किसी जन्म का हिसाब किताब है। पर अगर हम इसमें कड़वापन लाएंगे या कुछ कर्मों का हिसाब किताब और बनाएंगे तो फिर कब चुकतू करेंगे? क्योंकि अंत के समय तो बहुत कुछ होगा, सब हिसाब किताब चुकतू करने का समय आएगा, भटकती आत्माएं भी आएंगी, बहुत कुछ होगा, तो हमें कितना शक्तिशाली रहना होगा उस समय उन बातों का सामना करने के लिए। और फिर हिसाब किताब चुकतू करके धर्मराजपुरी की सजाएं न खाएं, ये बुद्धि में लक्ष्य रख के जाना है घर। इसलिए बाबा कहते हैं जरा भी अलबेलापन नहीं चाहिए, अगर अलबेलापन आलस्य होगा तो धर्मराज की सजाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। 63 जन्मों का हिसाब किताब है हमारे सिर पर, पापों का ऋण। एक तरफ 63 जन्मों का हिसाब किताब ऋण जो है वो चुकतू करना है, योग बल से करना है, नहीं तो सजा बल है चुकतू करने लिए। और दूसरी ओर 21 जन्मों की कमाई करनी है, इतना कमाई, इतनी कमाई करनी है। अब किसके सिर पर इतना ऋण हो, तो ऋण भी चुक तो करना है और कमाई भी करनी है। 63 जन्मों का ऋण और 21 जन्मों की कमाई, पूरे 84 जन्म, तो कितना कमाना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा? हाँ, ऐसे ही संपूर्ण बन जाएंगे क्या? ऐसे ही स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे क्या? तो इतनी कमाई करनी है, तो क्या इतनी कमाई करनी माना इतना ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान रत्न भरपूर करने अपने अंदर, इतना हमें योग करना है, इतनी एक एक गुण की धारणा करनी है, इतनी सेवा करनी है, तभी तो उच्च पद पाएंगे ना। तो समय कहाँ है और बातों के लिए, लेकिन छोड़ना भी कुछ नहीं है। अब ये कला है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, हंसते हंसते निभानी है, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते। हाँ, बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया, पतियों का पति मिल गया फिर क्यों रोए? रोना भी नहीं है, दुखी भी नहीं होना है, मन को अशांत भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करनी है और डरना भी नहीं है, भविष्य का डर भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अच्छा ही होगा, ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी, अच्छा ही होगा। तो डरना भी, तो डरना थोड़ी है, चिंता थोड़ी करनी है, सब अच्छा ही होगा, कुछ नया तो होना नहीं है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये एक्यूरेट ड्रामा, इतना सुंदर ड्रामा है, इस जैसा ड्रामा और कोई हो ही नहीं सकता है। सब कुछ सही है, सब जो कुछ होता है सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अब जब कुछ भी गलत नहीं है तो प्रश्न भी नहीं उठेंगे, ये क्यों, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। हाँ, ये क्यों क्यों का तो प्रश्न उठेगा ही नहीं, क्योंकि सही है। तो न प्रश्न उठेगा और न ही आश्चर्य होगा, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या, हाय हाय नहीं करेंगे। हाँ, बाबा अव्यक्त बाबा के जब लास्ट मुरलियां चलती तो बाप दादा ने क्या कहा, जो कुछ भी हो जाए, वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मैं, वाह वाह वाह, तो वाह वाह करेंगे ना कि हाय हाय करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, वाह बाबा वाह, बोलो वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म वाह, क्यों नहीं। तो इसीलिए हाय हाय तो मुख से कभी निकलना ही नहीं चाहिए। तो हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्यों हो गया, तो न क्यों निकले, न क्या निकले, न कब कहां कैसे, ये ड्रामा, इसको कहते साक्षी और दृष्टा। क्योंकि पता है सब कुछ, कुछ भी नया नहीं है। तो जब नया है ही नहीं तो फिर आश्चर्य थोड़े खाएंगे। और फिर जब ये बुद्धि में है कि अभी तो घर जाना है, अभी तो हिसाब किताब चुकतू करने है, किसी से मन मुटाव, किसी से वैमनस्य, किसी से अनबन, ये सब अभी नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर भूल भी की तो क्षमा ले लो, क्षमा मांग लो। सभी धर्मों में ऐसे ना, क्षमा मांगते हैं, भगवान से भी क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्षमा मांगना केवल नहीं है, फिर संकल्प करना है कि आगे कभी नहीं करेंगे। प्रतिज्ञाएं, बाबा तो कितनी प्रतिज्ञा कराते, वायदा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा भी करो। और बाबा वायदा करते हैं, बच्चे तो मुझे याद करोगे तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है कि मैं तुमको सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके पहले हमारा संकल्प चाहिए, हमारी प्रतिज्ञा क्या है, मैं बाबा को अब याद करेंगे। हम आधा याद करते आधी बात भूल जाते, मैं तुम्हारे सब पापों को नाश करूंगा, लेकिन बाबा कहते पहले हिम्मत रखो फिर मदद मिलेगी। अब हिम्मत रखते नहीं और कहते बाबा मदद करो, हिम्मत रखी पहले, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी ना, बिना हिम्मत के मदद कैसे मिलेगी। बाबा किनको मदद करेंगे, आज भी बाबा ने मुरली में कहा जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे होंगे। जब आज्ञाओं का पालन करते ही नहीं है, जो बाबा कहते हैं वो तो करते नहीं है, और फिर बाबा को कहते बाबा आप मदद नहीं करते, बाबा क्यों मदद करेगा, पहले आज्ञा का पालन तो करो। लौकिक में भी पिता अपने बच्चे को सब कुछ देने को तैयार है, तैयार होता है, लेकिन ये जरूर कहेगा ना बेटा तुम मेरी आज्ञा पर चलो, और ये तो भगवान की आज्ञा है, इनसे और ऊंची आज्ञा क्या हो सकती है। हमारे कल्याण के लिए ही जो आज्ञा बाबा देते हैं, अकल्याण तो कभी होगा ही नहीं इसमें। लेकिन अगर हम संशय उठाते रहेंगे या अलबेलापन दिखाएंगे या बहाने बनाते रहेंगे तो फिर बाबा थोड़ी मदद करेगा, हिम्मत तो अपनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते बस और कुछ करना नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो फॉलो करो, कदम पर कदम रखो, फॉलो फादर सी फादर। दुनिया में कहते कॉपी नहीं करना होता है, और यहां बाबा कहते जितना कॉपी करना चाहो ब्रह्मा बाबा को करो, कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचो ब्रह्मा बाबा अगर इस वक्त यहां होता तो बाबा क्या करता। ब्रह्मा बाबा ने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं, लौकिक जीवन में भी नहीं किया। कई पूछते हैं ब्रह्मा बाबा को कभी गुस्सा आता था, कभी नहीं, हम साक्षी है। बाबा प्यार से समझाते थे, चलो किसने भूल भी कर दी ना तो बाबा कहते थे अच्छा फिर आगे नहीं करना, बस बात खत्म। और कोई ऐसी बात होती थी बाबा मुरली में सुना देते थे, डायरेक्ट भी उनको नहीं कहते थे, नहीं तो फंक हो जाएगा, हार्ट फेल बाबा कहते हैं। इसलिए सीधा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो आत्मा इतनी कमजोर है, तो जैसे कमजोर कपड़े को अगर सटका लगाए तो फट जाएगा, इसलिए बाबा उनको डायरेक्ट नहीं कहते थे, बस मुरली में सुना देते थे, वो बच्चा अपने आप समझ जाता था ये बाबा ने मेरे लिए कहा है, पहले बाबा सामने नहीं कहते थे। तो बाबा तो यही चाहेंगे ना मेरे बच्चे इतने लायक बन जाए, इतने ऊंचे बन जाए, हाँ मेरे कदम पर कदम रखे और मेरे गद्दी नशीन बने। तो अभी क्या करना है, बेहद का वैराग्य चाहिए, इस भट्टी में ऐसा पक जाए जो इतना वैराग्य आ जाए संसार से, देखते हुए नहीं देखो, इच्छाओं से परे, हर बात में संतुष्ट रहना है। संतोष रूपी गुण इतना सुंदर गुण है, और जो संतुष्ट रहता है उसको मिलता है, इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, लोभी नर कंगाल है। जो लोभी होता है ना वो कंगाल ही होता है, चाहे कितना भी उसको मिल जाए। लोभी नर कंगाल है दुख पावत दुख देत, और निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। और हमारी तो पालना भगवान ही कर रहा है, इसीलिए ऐसी संतुष्ट मणि आत्मा ही बन जाओ जो सचमुच इतना परिवर्तन अपने जीवन में दिखाओ, तो जरूर सब आत्माएं आपके पांव पड़ेगी, पांव पड़ेगी। मैं आपको विश्वास से कहती हूं, मुझे याद आता है बाबा की एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि आप अभी आप लोगों को बुलाते हो वीआईपी के रूप में अपने प्रोग्राम में, पर वो समय आएगा जब आप वी 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 आई पी बन जाओगे और आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, ऐसे भी होगा और अभी हो रहा है। कल ही एक समाचार एक बहन ने लिखा हमको दिल्ली में, तो वहां पर वो कुछ मीडिया कर्मी, उनका कुछ फंक्शन था और उसमें उनको पुरस्कार देना था, तो क्या कहा वो ब्रह्मा कुमारी के पास आया कि ये पुरस्कार उनको देना है, हम आपके हाथ से दिलाना चाहते हैं। तो बताओ, ब्रह्मा कुमारियों के हाथ से दिलाना चाहते, ये नहीं बड़े नेताओं के हाथ से दिलाना चाहते, उनसे नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के हाथ से दिलाना चाहते। ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते और समझते, ये बड़ा गर्व समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी हमारे कार्यक्रम में आई। वो भी समय था जब ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होते थे, पर बाबा कहते थे बच्चे धीरज रखो, धीरज रखो, एक दिन आएगा ये सब आपके पांव पड़ेंगे। फिर चलो ज्ञान सुनने लगे तो कहते थे, कंपेयर करते थे, भेंट करते थे कि आप लोग तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो पर दूसरे भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप भी सुनाते हो पर वो भी सुनाते हैं, तो आप भी सुनाते हो। लेकिन बाबा कहते आखिर एक दिन आएगा जब वो कहेंगे आप ही अच्छा सुनाते हो, आप ही, भी नहीं, आप ही, आप ही जो सुनाते हो वो ही वास्तव में हमारा जीवन बनाएगा। बाकी तो कनरस है सब कुछ, सब जगह कनरस है और कुछ नहीं, हमें क्या करना है वो नहीं, और ग्लानी है देवताओं की क्या नहीं करते। बाबा कितने देवताएं कितने ऊंचे और कितनी ग्लानी, इसलिए बाबा ने हमको जो सत्य ज्ञान दिया है उस सत्य ज्ञान को समझकर जीवन में लाकर उस अनुसार अनुसरण करेंगे तो बाबा का नाम अवश्य बाला करेंगे, अपना भी करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। इतना धन्य बनाओ जो ये जन्म तो सार्थक हो ही, लेकिन बाबा कहते 21 जन्म तक कितना ऊंच पद पाओगे, यही बाबा हमसे चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल रीति से बताया कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे उपराम हो करके घर जाने की तैयारी करनी है, सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं और कमाई करके जाना है, साथ साथ क्या कहना है, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मेरे श्रेष्ठ कर्म, सच में कहना, दिल से कहना, ऐसे नहीं कि वाह वाह कह दिया, बोलने में क्या ज्यादा, लेकिन दिल से वाह वाह कब होगा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, ड्रामा पर इतना निश्चय हो और हर बात को क्या कहेंगे, हर बात अच्छी, जो हुआ अच्छा, ड्रामा बहुत पसंद क्योंकि वो बाप को पसंद है। तो दीदी ने बहुत सरल रीति से हमें घर जाने की विधि बताई, फिर भी दीदी जी एक आध प्रश्न थोड़ा सा, जैसे घर गृहस्थी में घर जाने के लिए कहते हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया तो सही, कि फिर भी घर गृहस्थी में कारोबार में जब व्यस्त हो जाते हैं तब जल्दी से उपराम नहीं हो पाते हैं, तब घर जाने का धुन वो नहीं रहता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि हम इसी में हैं, फंसे हुए हैं, तो वहां पर कार्य व्यवहार में घर गृहस्थी में किस तरह से घर जाने की धुन लगाएं?
नहीं हो सकता है, पहले तो अपने अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए मुझे कोई भी विकर्म नहीं करना है, मेरे द्वारा कोई भी विकर्म न हो, ये एक एक मेरी इंद्री कमल समान है, नयन कमल है, चरण कमल है, हस्त कमल है, हृदय कमल है, तो कमल कैसे कीचड़ में रहकर न्यारा रहता है, तो मुझे अब मेरे अंग अंग कमल सदृश बनाने, इन शरीर की इंद्रियों से किसी को दुख नहीं देना है, ये आंखें सिविल बन जाए, सबको आत्मा देखे, अंदर अभ्यास करना है, चाहे परिवार में भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये अभ्यास हमारा कायम रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, हमारी वाणी इतनी मीठी हो, इतनी ज्ञान युक्त हो जो अपने आप वो झुक जाए, लेकिन हम कड़वे बोल बोलते तो और ही वो कहेंगे आपको ये सिखाया ब्रह्मा कुमारियों ने, ऐसे ही कहेंगे अपने बच्चे ही कहेंगे, थोड़ा बहुत जोर से उनको डांटा भी तो क्या कहेंगे, मम्मी तुमको वहीं यही सिखाया, सेंटर पर यही सिखाया, मैं अभी टीचर को दीदी को कहूंगी ये गुस्सा करती है, तो बच्चे ही देखो, आप क्लास में आते एक दिन थोड़ी सुस्ती की तो घर वाले कहेंगे आज क्यों नहीं गई आप, सुस्त बन गई हाँ, क्यों नहीं गई या क्यों नहीं गया, तो इसीलिए मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कोई विकर्म हो, ये अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसी बात होगी जो आपको विघ्न डालेगी, बस अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उस पर हम लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन मुझे क्या करना है उस पर कम, इसीलिए ये बार बार अटेंशन है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं जो करूंगा करूंगी, मुझे देख दूसरे करेंगे, तो मैं वही करूं जिसको जो सचमुच दूसरे भी फॉलो करे, वो भी ऐसे लायक बने, तो मुझे क्या करना है, बस ये सदा बुद्धि में रहे, ठीक है।
अपने में परिवर्तन लाना है और अपने आप को ही धारणा मूर्त बन करके उपराम होना है। बहुत अच्छी बात दीदी जी ने बताई। दीदी जी, जब घर जाने की बात कहते हैं तो इजी लगता है, लेकिन कभी कभी घर जाना तो थोड़ा डर सा लगता है, ऐसे होता है ना कभी कभी, किसी किसी को घर जाने की बात से थोड़ी डर सी लगती है।
लगता है क्या डर?
किसी किसी
सब मरे
को,
पड़े
जिसको नहीं लगता है।
डर माना सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते सब मरे पड़े हा? सब मरे पड़े ना, जीते जी मर गए या नहीं, अभी तक जिंदा है क्या जी, क्या कहेंगे जो समझते हम तो जीते जी मर गए, हाथ उठाओ। अच्छा देखो
आप लोगों के टीचर्स भी देख रहे हैं।
डरना डर थोड़ा डर लगता है, अभी अगर विनाश हो जाए तो सब तैयार है कि नहीं, जो समझते हम तैयार है हाथ उठाओ। अच्छा सब तैयार है
तो
उसके तो पहले मरना पड़ेगा, तो तैयार है उसके लिए, मर गए
यहाँ आए हैं इसीलिए है ना।
नहीं नहीं जरूर जरूर, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा इतनी ऊंची ऊंची बातें हमें सुना रहे हैं, इतनी शक्ति भर रहे हैं, तो जरूर अंदर तो तैयारी है ही, बाकी ये जरूर है बाबा ने आज भी कहा, हाँ आज की मुरली थी या कब, कि ये बाबा के हवाले, अभी बाबा कभी भी उठाए हाँ, कोई बात नहीं, हाँ जितना जीते रहेंगे उतना बाबा को याद करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और बाबा को उठाना है तो उठाएंगे, इसमें क्या है, लेकिन हमारा लंगर उठा हुआ हो, इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास बहुत काल का चाहिए, अभ्यास बहुत काल का चाहिए, क्योंकि अचानक होना है ना कुछ भी, ऐसे नहीं कह के आएगा, तो इसलिए अचानक होना है, इसलिए हर वक्त हमको तैयार रहना है, पर हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, देही अभिमानी बनने का, शरीरी बनने का, न्यारा प्यारा बनने का, जो दैवी गुण बाबा कहते हैं वो अपने अंदर में धारण करने का, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। रोज अपनी चेकिंग चाहिए, चेक एंड चेंज। चेकिंग केवल नहीं, चेक कई बार कर लेते हैं पर चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं लाते। तो चेक करने के बाद चेंज आए, वो परिवर्तन आए। और दूसरों से भेंट नहीं करना, अपने आप से भेंट करना कि कल मेरे सामने इस प्रकार की परीक्षा आई थी, मैंने कैसे सामना किया, और आज अगर आई तो मैंने कैसे सामना किया, आज कल से बेहतर होना चाहिए। ऐसे नहीं आज कल से और बदतर हो, फिर तो फेल, फिर तो गिरे। आज जो आज का जो है वो कल से और अच्छा होना चाहिए। कल मेरे अंदर थोड़ी सहन शक्ति कम थी, आज मेरे अंदर सहन शक्ति ज्यादा है। कल मेरे अंदर हर्षित मुखता नहीं थी, आज मैं हर्षित मुख हूं। तो ये जो अपने साथ भेंट करना, इसको कहते हैं परिवर्तन की कला। ये परिवर्तन की कला आनी चाहिए, अपने साथ भेंट करो। और कैसे इससे मेरी उन्नति हो रही है, मैं कल से आज अच्छा हूँ, आज से कल और अच्छा हो जाऊंगा, यही वास्तव में सच्चा विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे नहीं बस ठीक है जो चलता है चलने दो, कोई बात नहीं जो मिलेगा चलेगा, नहीं, फर्स्ट नंबर आना है। तो अगर ये लक्ष्य पक्का होगा तो हम उड़ती कला का भी अनुभव करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, योग पर ध्यान देंगे, धारणा पर ध्यान देंगे, सेवा करेंगे, बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे। ठीक है,
बहुत अच्छा। बहुत समय का अभ्यास हो तो डर नहीं,
इनको कुछ पूछना है, इनको कुछ
आपको पूछना है, आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद एक दो सूचनाएं है, सुन के ही जाना है।
डर लगता है
धन ज्ञान में अकेली चलती है, परिवार में और कोई नहीं चलते हैं, ये चाहती कि उनका धन ईश्वरीय कार्य में लगे।
उसके लिए मनसा सेवा करनी पड़ेगी कि बाबा उनका भी यज्ञ में रहे लगे, बाबा वो भी सेवा करे, ये बाबा से बातें करो तो देखो बाबा उनको टच करेगा। बाबा को कहो, ये नहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, नहीं बाबा तो कहते मांगने से तो मरना भला, लेकिन बाबा को कहो बाबा हम ये चाहते, तो आपकी जो भावना है ना उस भावना अनुसार उनको भी टचिंग आएगी। बाबा को ही तो क्या कहते,
साइलेंस में रहना चाहती हूँ।
हाँ भले साइलेंस साइलेंस में रहो, अच्छी बात है, लेकिन बाबा को जरूर कहो दिल की बात, जो भी दिल की बात है वो बाबा को कहो। हाँ साइलेंस में रहो, साइलेंस में रहो, वो तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहो तो बाबा की याद बनी रहेगी और बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। हाँ बहुत अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बहुत और भी कुछ प्रश्न थे परंतु आपकी क्लास में वो प्रश्नों का जवाब मिल गया है। Thank you.
रात गए गुजर हो गई है किस्मत गई सवर